नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट्स है।
वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
धन्यवाद फरहत।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।